ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारी पहली वाली कक्षा जो चल रही थी उसमें हम चर्चा कर रहे थे समय का प्रभाव। तो उसमें मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा था, तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारा जीवन ही हो गया राधेश्याम प्रभु की कृपा से, कि समय के प्रभाव से आपका स्थान ही बदल जाएगा। हम बैठे थे दूसरे मंजिल पे, वो सेवा ऑफिस के ऊपर, पहले मंजिल पे, दूसरे मंजिल पे, तो वहां से भगवान ने हमें ग्राउंड लेवल पे लाया, इधर बेसमेंट में भगवान के चरणों में लाया। शायद हम भगवान के ऊपर बैठे थे, भगवान बोले नहीं ना, तुम ऊपर नहीं बैठ सकते, तुम मेरे नीचे आ जाना चरणों में। तो भगवान ने कृपावश हमें उनके चरणों में आश्रय दिया है अभी, हम सभी को, विशेषता मुझे जो मान में हम शायद ऊपर बढ़ रहे थे। तो इस तरह से समय के प्रभाव से क्या हो सकता है किसी को पता नहीं चले। शायद ना 6:30 तक हमारा मीटिंग चलने वाला था और काफी अच्छा लग रहा था, शायद हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले थे, तो भगवान बोले नहीं वहां नहीं रहना है, उसके पहले आपको स्थान से हम बदल देंगे करके। तो अर्थात इधर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय, जिसका शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। इसमें आज की श्लोक संख्या 25 के 24, 24 से शुरू करना है। ठीक है, 24 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ततश्च वः पृश्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः। अभी क्योंकि मैं राधेश्याम प्रभु का जानता हूँ कैसे शैली है, कैसे देते हो, तो मैं अपने ही शैली से दे रहा हूँ, कृपया थोड़ा सहन कीजिए। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तो ये शायद हमारे परीक्षित महाराज का प्रश्न है, जो गंगा तट पर जो उनको ऋषि मुनि मिले, उनको उन्होंने ये प्रश्न पूछे। क्योंकि इसके पश्चात, इसके पूर्व हमने देखा होगा कि उनको शाप मिला शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने, तो कथा बड़ी है, शायद आपने चर्चा की होगी। तो उनमें जो शाप प्राप्त हुआ कि 7 दिन के पश्चात ही उनकी मृत्यु आने वाली थी। तो ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति तो ऐशो आराम के लिए जाएगा, 7 ही दिन बचे है, 24/7 इंग्लिश में कहते हैं, 24 घंटा एक दिन के और ऐसे 7 दिन, तो 24/7 में वो बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति में लग जाते थे। विशेषता वो तो नृपति थे, पूरे धरातल के राजा थे। तो लेकिन वो खाली नृपति नहीं थे, एक राजा नहीं थे, वो राजर्षि थे, राजाओं में ऋषि थे। तो इसलिए उन्होंने, अगर कोई सामान्य राजा होता, जैसे आज का पॉलिटिशियन भी एक तरीके से राजा होता है, तो वो इंद्र तृप्ति के लिए जाता, लेकिन ये राज ऋषि होने के कारण अंदर से, ऊपर से है राजा लेकिन अंदर से है ऋषि। तो ऊपर का जो राजत्व है उनका, वो तो अभी 7 दिन में गिरने वाला है, तो इसलिए उनका जो ऋषित्व है, जो अभी तक छुपा हुआ है, सामान्य जनता को दर्शन नहीं हो रहा है, वो अभी तुरंत दर्शन हो रहा है इधर। तो उन्होंने तत्पश्चात तुरंत ही अपने मंत्रीगणों को बुलाया, और उनका जो छोटा बच्चा था जन्मेजय, उनको कहा मंत्रियों को कि आप इसको तुरंत अभी आप राजा के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हालांकि छोटा है, युवक है, युवराज है, लेकिन आप इनको मार्गदर्शन कीजिए, और मैं चला जंगल में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 ही दिन बचे हुए, तो मुझे तो जाना ही होगा, इसके बाद तो मृत्यु तो होने ही वाली है, तो उसके पहले मैं अपने जीवन को, पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए, आप इनके द्वारा राज्य कारभार चलाइए। और फिर वो तुरंत चले गए, और वहां उनको बहुत सारे ऋषि मुनि मिले, तो उनको उन्होंने ये 2 प्रश्न पूछे जो इस श्लोक में विशेषकर वो पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न तो थोड़ा जनरल है, सामान्य प्रश्न है कि मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में बताइए, हर एक किसी का हर किसी परिस्थिति में क्या कर्तव्य होता है ये बताइए। और दूसरा प्रश्न थोड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि वो पूछ रहे विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, और वो कौन है, वो खुद है, लेकिन एक्चुअली वो खुद ही नहीं है, हर कोई है, क्योंकि हर किसी की मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है। एक तो आपकी मृत्यु मृत्यु या मेरी मृत्यु सोमवार को होगी, अन्यथा मंगलवार को, अन्यथा बुधवार या गुरुवार या शुक्रवार या शनिवार, नहीं तो फिर इतवार, इसके अलावा 8वां दिन है कोई, है ही नहीं, तो 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली है। तो ये हर किसी की स्थिति है, तो वो पूरे तरह से जानते हैं, लेकिन भगवान अपने ऐसे महान भक्तों को एक इंस्ट्रूमेंट, साधन बनाकर हम सभी बद्ध जीवात्माओं के लिए एक सीख देते हैं। जैसे पितामह अर्जुन को इस्तेमाल कर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता पूरे समाज के कल्याण के लिए दे दी, और वही उनके पोते परीक्षित महाराज को इस्तेमाल कर भगवान ने श्रीमद् भागवतम, जो उससे भी बड़ा है, 18,000, वो 700 श्लोक, तो ये 18,000 श्लोक के द्वारा भगवान हम सभी का उद्धार करना चाहते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज को इस्तेमाल किया जा रहा है भगवान के द्वारा, और भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी स्थिति में हो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तोहार, आप मुझे मारना चाहो, आप मुझे रक्षण करना चाहो, आपकी इच्छा भगवान, बस मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने वो शरणागत होते हैं, तो भगवान इसलिए उनको ही इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं डरना चाहिए कि शायद कहीं मेरा 7 दिन के बाद मृत्यु न अनाउंसमेंट हो, नहीं हमारी नहीं होगी उतनी, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं है। जिसकी वो हिम्मत होती है, जो भगवान की शरणागति में उतना है तत्पर, उसी के लिए भगवान ऐसे करते हैं, और फिर उसकी प्रार्थना भी बहुत अच्छे से सुनते हैं भगवान। ऐसे कहते हैं कि षडविधा शरणागति जहार तहार प्रार्थना सुने व्रजेंद्र कुमार, जिसका षडविधा जो रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत जो हमें बताया है कि शरणागत है कोई भक्त तो उसके 6 अंग होते हैं, तो जिसका वो 6 अंग वाला शरणागति है, उसी की प्रार्थना भगवान तत्क्षण सुनते हैं, उसके मन में क्या विचार आया तुरंत वो पूर्ण हो जाता है। यहां तक कि प्रभुपाद, जो साल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1900 जब थे वो, तो वो भारत में प्रचार करने के लिए आए अमेरिका के, अमेरिका से, तब जब वो भारतीय विद्या भवन मुंबई में जो गिरगांव चौपाटी के उधर है, तो वहां से एक कार्यक्रम दिए, और वहां से बाहर जा रहे थे, तो वहां सीढ़ी है, आपने अगर देखी होंगी, तो सीढ़ियों से उतरते समय प्रभुपाद ने बंबई का भागता देखा, और एक दिशा में हाथ करके बोला कि ये बंबई का बहुत ही अच्छा सधन व्यक्तियों का स्थान है, क्यों ना यहाँ हमारा एक अच्छा मंदिर हो, कितना अच्छा होता अगर हमारा एक मंदिर हो। तो उन्होंने जिस दिशा में हाथ किया था, उसी दिशा में आज हमारा श्री राधा गोपीनाथ मंदिर स्थित है। चलो प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद की शरणागति क्या कहना उसके बारे में, कि नहीं, कौन व्यक्ति 70 साल की आयु में 2 हार्ट अटैक के झटके के बाद, उसके बावजूद भी 40 रुपए लेकर एक मालवाहू जहाज के ऊपर 48 दिन प्रवास करके जाएगा, किसी की हिम्मत ही नहीं। मैं प्रवास बहुत करता हूँ, एक बार मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रवास हुआ तो शायद 48 आवर्स का हुआ था, शायद 2 दिन लगातार, हम थोड़ा बीच में 2-3 घंटे का गैप था, एक के बाद एक ट्रेन, शायद नीचे साउथ इंडिया से लेके हम शायद कलकत्ता तक गए थे, तो शायद वो 2 दिन का, वो तो ट्रेन में था, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, और 2 ही दिन का था ये, प्रभुपाद का 48 दिन का, और समुन्द्र में हाँ जहाज के ऊपर, वो भी मालवाहू जहाज, उसमें क्या सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं थी। दो हार्ट अटैक के झटके कौन व्यक्ति होगा दुनिया का जो बिना डॉक्टर के, बिना कंसल्टेंसी, बिना किसी मेडिसिन के, या बिना कुछ किए बिना, है ना, गुजार रहे हो? ऐसा कोई शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। थोड़ा इधर उधर हो जाता तो हम 100 डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि नहीं, और इतना सारा एक्सरे निकाल लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और एक झटका तो आ गया तो लोग डॉक्टर हॉस्पिटल में शरणागत हो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद कृष्ण के शरणागत थे, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। तो यहाँ परीक्षित महाराज, ये तो राजर्षि है, तो इनकी ये इच्छा है, तो अर्थात इनकी इच्छा की पूर्ति मात्र भगवान ने वहां सुखदेव गोस्वामी को भेजा। ये जो अध्याय है, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, अभी तक सुखदेव गोस्वामी प्रकट नहीं हुए, व्यासदेव ही सब कुछ बोलते आ रहे इतने श्लोकों में, लेकिन अभी इस अध्याय में वो प्रकट होने जा रहे हैं। क्यों प्रकट होने जा रहे हैं? क्योंकि ये राजर्षि है, ये भगवान के शुद्ध भक्त है, और इनके लिए इतना बड़ा लंबा, इतना बड़ा 18,000 श्लोकों का ये भागवतम दोहराया जाने वाला है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, जो उन्होंने अपने खुद पिताजी से, व्यासदेव जी से सुना है, श्रुतिधर है, सब कुछ याद है, और ऐसे के ऐसे ही बताने वाले है। लेकिन ऐसा उनका वर्णन आता है आगे कि किसी भी गृहस्थ के घर वो जाते थे तो उस गृहस्थ के उद्धार हेतु ही जाते थे। तो एक सन्यासी आए, एक साधु आए, तो उनको कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो ज्यादातर वो लोग दूध देते थे, तो दूध निकालने के लिए गाय का थोड़ा आधा घंटा लगता होगा, तो आधा घंटा वो दरवाजे में खड़े हैं, तो तब तक लोगों को भक्ति मार्ग का प्रचार करते थे, वो बताते थे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए गृहस्थों को विशेषता, और उसके बाद वो आगे चले जाते थे, किसी भी घर में फिर बार बार नहीं जाते थे, तो ऐसे ही गांव गांव भ्रमण करते थे। लेकिन यहां पहली बार वो 7 दिन 7 रात लगातार यहीं पे बैठने वाले हैं जमकर एकदम, किसके लिए? एक राजा के लिए। पहले तो किसी राज दरबार में प्रवेश भी नहीं किए थे, जन्म से लेके अभी तक उन्होंने किसी भी राज दरबार में कभी भी प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि बड़े वैराग्य थे। जैसे जन्म हुआ 16 साल के जवान थे और निकल चले, भाग चले जंगल की तरफ, पिताजी ने कैसे तो मना कर उनको लाया घर में, भागवतम के श्लोक बताए, और उसके बाद वो तो फिर से गांव गांव भ्रमण करते जा रहे। तो लेकिन पहली बार एक राजा के लिए, और वो राजा नहीं सम्राट है, पूरे पृथ्वी का राजा है, उसके लिए वो एक ही जगह पे जमकर बैठकर 7 दिन 7 रात लगातार बिना किसी पानी का एक बूंद पिए, बिना किसी अन्न का और भिक्षा की मांग किए वो लगातार बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े शुद्ध भक्त हैं। तो उनकी इच्छा है ये दो प्रश्नों के द्वारा कि पूछ रहे, एक सामान्य व्यक्ति का हर परिस्थिति में क्या कर्तव्य होना चाहिए, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तो ये उनका प्रश्न है, देखते प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वो तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। इस तरह से संपूर्ण श्रीमद भागवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद्गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दे, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई है। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की है। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। तो ये बहुत ही विशेष है। अभी जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनको पहले से पता है कि क्या पद्धति है, क्या प्रणाली को आजमाना चाहिए जिससे कि मैं भगवत धाम प्रयाण कर सकूं। ये उनको पहले से पता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, हम भगवत धाम से हैं, ये सब कुछ जो हम चाहते हैं हम जानते हैं, डिवाइस से लेकर भक्ति शास्त्री हो या उसके आगे भक्ति वेदांत विद्यापीठ हो, या भक्ति वैभव हो, जो भी कोर्सेस हम कर रहे हैं, ये सब उनको पहले से पता ही था, और उनको पता है क्या करना चाहिए, ऐसे समय में भगवत धाम जाना होता है उसके लिए क्या करना है, नवविदा भक्ति सब कुछ उनको पता है, लेकिन फिर भी वो पूछताछ कर रहे हैं। ये बहुत ही विशेष होता है कि जो व्यक्ति शरणागत होता है वो अपने ऊपर वाले जो गुरुवर्य है उनके प्रति इतना शरणागत होता है कि आदरता से, आदर से या नम्र भाव से उनसे पूछताछ करता है वो चीजों के बारे में जिसके बारे में उसको पता होता है, लेकिन दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। हाँ, मैं हमारे ब्रह्मचर्य क्लासेस में चैतन्य चरितामृत क्लासेस लेता हूँ, तो वहां हमारा जो चल रहा है चर्चा, वो चल रहा है चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो संबंध हुआ, चर्चा हुआ वाराणसी में स्थित, वो तो कथा आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़े पार्ट पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो उसमें वो बोलते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, अरे आप तो एक बड़े सन्यासी है, हमारी जाति के हैं, हमारे शंकर संप्रदाय में हुआ है, तो आप क्यों ऐसे पागलों की तरह, यू नो, जैसे स्त्रियां होती है, बच्चे होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो ऐसे रास्ते में नाचने लग जाते हैं, आप क्यों अनपढ़ों की तरह ऐसे ही नाच कूद रहे हो, यू भी वाराणसी के या अन्य सड़कों पे, आपको, आप सन्यासी हैं, आपको तो वेदांत अध्ययन करना चाहिए, गंभीरता से जीवन का जो लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आप क्यों ऐसे बच्चों तरह, बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु के पास गया तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम क्या वेदांत समझोगे, तुम्हें नहीं समझ में आने वाला कुछ, है ना। तो तुम, मुझे बहुत डांटा उन्होंने और कहा कि वेदों का सार है हरि नाम, तुम बस हरि नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस अभी उनकी इच्छा, उन्होंने डांटा मुझे, अभी डांटते हैं गुरु तो क्या बोल सकता है शिष्य, तो मैंने स्वीकार कर लिया अपनी मूर्खता को, गुरु महाराज कह रहे सही होगा, और मैं हरि नाम जप करने लगा, और जैसे ही जप करते रहा तो पता नहीं क्या होने लगा, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा शरीर अंग अंग कांपने लगा, और मैं पागल जैसा बन गया, नाचने लगा, कूदने लग गया, रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया, लोटपोट होने लगा, मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैं अपने गुरु महाराज के पास गया, उनके गुरु महाराज कौन, शिलेश्वर पुरीपाद, तो उनके पास गया और मैं पूछा कि गुरु महाराज ये क्या हो गया, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र कोरिला पागल, कि हे गोसाई जी, हे मेरे गुरु महाराज, किस प्रकार का मंत्र आपने दिया है, किबा तार बल, उसका क्या शक्ति है, जपीते जपीते जैसे जप करते जा रहा हूं मेरा मन पागल होता जा रहा है, मैं पागल ही बन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत विशेष चीज लिखते हैं जो हम सबके लिए है। अभी यहां तो उड़ रहे चैतन्य महाप्रभु भगवत भक्ति में, अष्ट सात्विक विकार उनमें प्रकट हो रहे, वो तो है भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में, ये तो स्वाभाविक है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद हमारे लाइन में आ जाते हैं, हमारे ग्राउंड लेवल पे, और प्रभुपाद क्या बोलते हैं वहां कि इससे पता चलता है कि एक भक्त को, विशेषतः एक शिष्य को, उसके आध्यात्मिक जीवन में जब कभी जिस किसी विषय के बारे में थोड़ा सा डाउट, शंका, संशय आ जाए तो तुरंत उस विषय को अपने गुरु के पास जाकर उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो बोलते हैं जब कभी, ऐसा नहीं कि कभी कभी, जब कभी मन में संशय आ जाए किसी भी विषय के बारे में तो तुरंत एक शिष्य को ये विषय को अपने गुरु के पास पूछताछ करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि यहां तक कि कोई लिबरेटेड भी हो, मुक्तात्मा भी क्यों ना हो, हम तो बद्धात्मा है ना, हम तो बद्ध जीवन में है, लेकिन मुक्त भी हो तो उसे भी जरूर अपने गुरु महाराज के पास जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे हो रहा है या मेरे मन में ऐसी शंका आ रही है, बताइए इसका क्या क्या है उलझन, ये उलझन का क्या सुलझन है, तो वो बताएंगे, फिर उसके अनुसार जीवन चलाना चाहिए। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ राजर्षि है हमारे परीक्षित महाराज, उनको तो सब कुछ पता है, उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है एक तरीके से, लेकिन हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तावित कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे, हालांकि हमें कन्विक्शन हो, हमें ये पूरी तरह से पता हो कि ये करना चाहिए, फिर भी पूछताछ करनी चाहिए, ऐसी चीज ना कर बैठे हम जो अपने ही मन से निकली हो और उसको हम पूर्ति कर दे, कभी कभार हो सकती है गलत सही हो, लेकिन काफी बार हो सकती है गलत हो जाए और फिर समस्या हो जाएगी। जैसे श्रृंगी थे, उनके मन में जब ऐसा समस्या प्रकट हुआ तो अपमान किसका हुआ था, श्रृंगी का नहीं हुआ था, शमिक ऋषि उनके पिताजी का हुआ था, तो उनको क्या करना चाहिए था, पिताजी के पास जाके अपना सब भड़ास निकालना चाहिए था, पिताजी आपका उसने ऐसा अपमान किया, उस जालिम राजा को मैं शाप दे देता हूं। फिर पिताजी कहते नहीं बेटे शांत हो जा, अरे अपमान मेरा किया ना, गले में किसके सांप डाला, तेरे के मेरे, मेरे डाला ना, तो शांत हो जा। मैं शांत हूं तो तू क्यों इतना अशांत है? तो नहीं, ये कदम गलत उठाएंगे तुम अगर तुम ऐसा करोगे तो। नहीं, वो राजर्षि वो पूरा प्रवचन ही दे देते थे कैसे उनका नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने गलती कर दी और उसके कारण भी बहुत सारे अंजाम पूरे समाज को भुगतने पड़े। तो इसलिए किसी भी जल्दबाजी में या विशेषता शंका आती है तो हमें कभी भी तुरंत कुछ अपने ही मन से, हालांकि विचार आ रहा है कुछ जो वेद शास्त्रों से गुरुवाणी से सुनाने के बाद भी हमें पता है, फिर भी नहीं उसको करना चाहिए। अपने गुरु के पास हम बोलेंगे गुरु महाराज तो हमारे दुनिया भर भ्रमण करते हैं, हम कहाँ प्राप्त करेंगे, तो उनके प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको पूछना चाहिए कि प्रभु जी जो भी है कि मुझे ऐसे समस्या हो रही है और ऐसे मेरे मन में शंका आ रही है और मुझे लग रहा है ऐसे उसका हल है, तो क्या मैं इसके लिए जाऊं ये करूं? तो वो बोले हाँ तो जाओ, नहीं तो फिर वो बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो फिर वैसा करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज यहाँ बहुत ही आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम सबके लिए कि हालांकि उनको सब कुछ पता था, बचपन से भक्ति करते आए हैं, उनके लिए तो उनके जन्म के पूर्व ही माँ के गर्भ में ही भगवान ने उनकी रक्षा की थी। बचपन से वो परीक्षा कर रहे थे हर व्यक्ति की, कौन था वो व्यक्ति जिसने मेरे माँ के गर्भ में मेरा मेरी रक्षा की, और हर किसी के रेंगते हुए बच्चे के रूप में वो धोती खींचते थे लोगों की, और वो व्यक्ति बात कर रहा है और पीछे देख कौन है नीचे, वो देखता था अरे ये कौन छोटा बच्चा है, तो वो नहीं देखते थे, प्रश्न भी नहीं पूछते थे, सिर्फ देखते थे कौन है ये व्यक्ति, और देख के उनको समझ में आता था कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने मेरी रक्षा की थी। तो ऐसे हर व्यक्ति की परीक्षा कर रहे थे इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ है। तो वही कोई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही विशेष है। तो हमारे सामने ये बहुत ही अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को जानकारी होने के बाद भी भक्ति में उसको पूछताछ करनी चाहिए। तो इसलिए वो पूछताछ कर रहे हैं ये सभी ऋषि मुनियों से यहाँ, विशेषता दो प्रश्नों के रूप में, और उनको ही पूछ रहे कि बताइए कि क्या मेरा कर्तव्य है। तो अभी श्रीमान राधेश्याम प्रभु प्रकट हो चुके हैं, भगवान ने उनको भेजा इधर, तो हम उनको ही निवेदन करेंगे कि वो आगे कक्षा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योगेंद्र बोल हम लोग श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के अंतिम अध्याय 19वां अध्याय पढ़ रहे थे। इस अध्याय में अभी जो सुंदरश्याम प्रभु 24वां श्लोक किया, उन्होंने परीक्षित महाराज के दो प्रश्न थे। जो इंसान मृत्यु के निकट पहुंच गया हो उसके लिए धर्म क्या है, और जो मनुष्य इस दुनिया में जी रहा है उसके लिए क्या धर्म है, साधारण लोगों के लिए क्या धर्म है, मृियमाण का मतलब मृत्यु के निकट आ गया है उसके लिए क्या धर्म है, दो प्रश्न वो पूछते हैं। उधर अनेक ऋषि मुनि जुटे थे, तो वो लोग अलग अलग पंथ के थे। कुछ लोग थे ज्ञानी, कुछ लोग थे योगी, कुछ लोग थे कर्मकांडी, और कुछ लोग भक्त भी थे उसमें। तो वो लोगों को जब ये प्रश्न पूछा गया, हालांकि उन सब ऋषि मुनियों की गुणगान हुआ है भागवत में, क्योंकि इस दुनिया में देखा जाता है कि जो लोग स्वार्थी होते हैं, अपने पेट पालन में, अपने काम धंधे में पड़े रहते हैं, इंद्र तर्पण में, तो वो लोग कभी भगवत चिंतन में, नहीं तो भगवत भगवान के संबंध में जिज्ञासा करने में रुचि नहीं लेते। वो उनको इस दुनिया से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ट्रेन में आप लोग देखते हो मुंबई में इतना भीड़ भाड़ होता है, लोग ऐसे बाहर लटके हुए हैं ट्रेन से, इतना भीड़ होता है उसमें। और कुछ कुछ लोग पूना से मुंबई जाते हैं, मुंबई से पूना लौट आते हैं रोज, क्योंकि उनको 300 रुपया ज्यादा मिलता है मुंबई में, 300-400 रुपये के लिए लोग इस तरह कसरत करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि वो लोगों को रुचि नहीं है अध्यात्म में, भगवान के संबंध में, परलोक के पदवी के संबंध में। इसलिए अगर कोई उस वर्ग के लोगों से ऊपर उठकर कर्मकांड भी करता हो कोई भगवान के लिए स्वर्गलोक जाने के लिए, नहीं तो कोई ज्ञानी हो जो ब्रह्म में लीन होना चाहता हो, योगी हो जो अष्टांग योग करके उसके द्वारा मन इंद्रिय अपने अंतःकरण को संयमित करके भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाता हो, नहीं तो उससे भी बढ़कर भक्त है, भगवान के भक्त। तो ये सब लोगों को शास्त्र में गुणगान किया गया है, क्योंकि ये लोग शास्त्र को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, कुछ मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आए थे, उनका भी प्रशंसा हुआ है इस अध्याय में। तो पूर्व श्लोक में हमने उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन वो लोग जैसे नेचुरोपति, अलोपति, होम्योपति, ऐसे सब अनेक पति है, लेकिन कोई भी पति लक्ष्मीपति को नहीं जानते हैं। तो ऐसे ये सब लोग अलग अलग मार्ग को लेकर आए थे, क्योंकि ज्ञान मार्ग के तौर पर, योग मार्ग के तौर पर, कर्मकांड के तौर पर अलग अलग जवाब दे रहे थे वो लोग। अगर आप लोगों को भी तबीयत ठीक नहीं हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अलोपैथी डॉक्टर कुछ दवाई देता है, होम्योपैथी और अलग देता है, आयुर्वेदिक और अलग देता है। इस तरह परीक्षित ने देखा कि उनके बीच में भी मतभेद है, उन ऋषि मुनियों के बीच में भी। तो तब वो सोच रहे थे कि कोई है क्या इधर जो ऐसे एक अंतिम निष्कर्ष मुझे दे सकते हैं कि यही करना है, यही धर्म है, इससे बढ़कर दूसरा कुछ धर्म नहीं है, ऐसे दृढ़ता के साथ कोई बता सकता है क्या। इतना ही नहीं, जो आए हुए ऋषि मुनियों को भी उस बात पर विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए, ऐसे कोई चाहिए था उनको। उस समय आप देखेंगे अभी 25वां श्लोक है, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागाम् अटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। तत्र अभवत्, उस समय उस स्थान में गंगा के तट में एक व्यक्ति प्रकट हुए। कौन है वो? भगवान व्यासपुत्रो। देखिए, कभी कभी भगवान के भक्तों के नाम के साथ भी भगवान शब्द जोड़ा जाता है, जैसे बादरायण, भगवान बादरायणी, भगवान व्यास, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं है कि भगवान के भक्त भी भगवान बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, जैसे स्पॉन्ज जो होता है उसको पानी के अंदर डुबोने से क्या होता है, पूरा स्पॉन्ज में पानी भर जाता है। इस तरह पानी का स्पॉन्ज होता है, उसको लेकर हम बोर्ड को सफाई करते हैं। इस तरह कोई व्यक्ति अगर कृष्णमाया हो, कृष्ण को धारण करता हो, उसको देखते ही लोगों को कृष्ण का स्मरण आता है, उसको सुनते ही कृष्ण के लिए प्रीति जागृत होता है हृदय में, उसको उसके सान्निध्यता में एक व्यक्ति को भगवान के नाम बोलने की इच्छा होता है, तो उस व्यक्ति को भगवान नाम जोड़ा जाता है, भगवान नारदा, भगवान सुखदेव, भगवान शिव, ऐसे। हम जानते हैं कि ये सब जीवात्मा ही है, लेकिन उनके नाम के साथ अगर भगवान जोड़ा जाता है तो इसका मतलब है भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए विचरण करते हैं ये लोग, इसलिए उनका नाम से भगवान जोड़ा गया है, भगवान व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र। यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्षः, ये बताया गया कि यदृच्छया का मतलब है अनायास, ऐसे स्वाभाविक रूप से उधर आकर पहुंच गए वो। ये यदृच्छया शब्द का मतलब क्या है? देखिए ऋषि मुनि उनको कुछ गंतव्य स्थान नहीं होता, जैसे जिधर लोग उनको बुलाते हैं प्रवचन देने के लिए उधर चले जाएंगे। प्रभुपाद जी पहले झांसी में गए, उधर देखा कि झांसी के लोग प्रभुपाद अकेले हरिनाम करते थे सड़क में। उसके बाद कुछ सीनियर सिटीजन वरिष्ठ लोग ज्वाइन किया, प्रभुपाद के साथ जुड़ गए और ऐसे लगभग 25-30 लोग हरिनाम करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि ये लोग कभी कभी आते हैं सत्र के लिए, लेकिन लगातार नहीं आते हैं, तीव्रता से माला नहीं करते हैं और भक्ति में गंभीरता से जुड़ते नहीं। तो प्रभुपाद ने देखा कि इधर प्रचार काम उतना ठीक नहीं हो रहा है झांसी में। तुरंत उनके गुरु का आदेश याद आया, तुम पाश्चात्य देश में जाकर क्यों नहीं प्रचार करते, उधर के लोग अगर भक्ति में जुड़ेंगे तो सारे दुनिया के लोग जुड़ेंगे, ऐसे उनके गुरु ने बोला था। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई लोग सब लंदन में गए थे पहले प्रचार काम के लिए, लेकिन लगभग 35 साल प्रचार करने के बाद एक ही भक्त मिले उनको, एक माता जी, उनका नाम था एलिजाबेथ कवल, उसका दीक्षित नाम था विनोदवाणी दासी, वो नाम था उनका। लेकिन वो सब लोग अब पैंट शर्ट पहने लंदन वासियों के साथ फोटो निकाला और वापस लौट आ गए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ लंदन में। वो आकर बोले अपने गुरुजी बक्सान से ठाकुर को, ज्यादा पछा नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद ने क्या सोचा, मेरे कुछ गुरु भाई लोग लंदन में ट्राई मार कर आ गए वापस, हमें उधर नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका ट्राई करूंगा, ऐसे बोले प्रभुपाद जी, इसलिए अमेरिका गए प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी की योजना ऐसा था कि जिधर भी लोग रुचि दिखाते हैं उधर चले जाओ। जब हमने कृष्ण रसायनम चालू की, लोगों ने पूछा कि प्रभु जी अगर लोग नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। मैंने बोला जब तक दो डिजिट है मैं चालू रखूंगा। दो डिजिट में कितना है? 10 लोग। 10 लोग को रुचि हो हम इसको चालू रखेंगे। तो आप लोग रुचि लेते हो, आप लोग आते हैं, इसलिए चलता है ये कार्यक्रम। इस तरह प्रभुपाद जी भी जाते थे एक स्थान में, अगर लोगों को रुचि है तो उधर करते थे, अगर लोग रुचि नहीं ले रहे हैं तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते थे। इसलिए साधु महात्माओं का मार्ग जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है। यदृच्छया आज का मतलब जिधर भी मौका है भगवान की गुणगान करने के लिए उधर पहुंच जाएंगे साधु लोग। तो इसलिए यदृच्छया नाम इधर दिया गया है। और दूसरा चीज है, क्यों यदृच्छया शब्द दिया है, भगवान के भक्त लोगों को भगवान ही चलाते हैं। जैसे जब ध्रुव महाराज को जंगल जाना पड़ा अपने माँ के इच्छा अनुसार विष्णु को दर्शन करने के लिए, उधर जंगल पहुंचते ही भगवान विष्णु ने नारद जी को प्रेरणा दिया, हे नारद तुम मधुवन में चले जाओ, एक प्रचार के लिए एक अच्छा मौका है उधर तुम्हारे लिए, एक लड़का आया है उधर, पहुंच जाओ उधर, ऐसे भगवान ने उनको भेज दिया। उधर पहुंचते ही कौन था? उधर ध्रुव महाराज था। तो गुरु और शिष्य का मुलाकात हो गया। इस तरह गुरु और शिष्य का मुलाकात करने वाले कौन है? भगवान है। भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं शिष्य को ऐसे। इसलिए इधर अदृच्छया बताया गया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने योजना नहीं बनाया कि हमको इधर जाना है गंगा के तट में, लेकिन भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा दिया ऐसे, तुम आप उधर जाओ, उधर एक आदर्श शिष्य उधर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए बताते हैं यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्षः। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चलने वाले फिरने वाले थे सुखदेव गोस्वामी, और अनपेक्षा किसी भी अपेक्षा नहीं था उनको किसी भी चीज से। वो भौतिक दुनिया के कथाकथित विजय, जो लोग भौतिक दुनिया में पूछा जाए तो विजय क्या है, लोग बोलेंगे अगर पैसा बहुत मिल गया आपको तो बड़े विजय हो गए, नहीं तो फॉरेन चांस मिला तो तुम विजय हो गए जीवन में, नहीं तो खूबसूरत शरीर है तो विजय हुए, नहीं तो अच्छा खाने के लिए मिलता है तुमको, तो इस तरह लोग सोचते हैं अलग अलग चीज है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो हैं इस भौतिक दुनिया की कथाकथित चीजों से वो उसमें अरुचि दिखाया उन्होंने, अनपेक्षा है, किसी भी अपेक्षा उनके अंदर नहीं था इस तरह, क्योंकि वो भगवत चिंतन में इतने आनंद, दिव्य आनंद, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिव्य उन्माद उनको प्राप्त हुआ, इसलिए वो दुनियादारी चीजों में रमते नहीं थे। वो अनपेक्षा अलक्ष्य, अलक्ष्य का मतलब क्या है, जैसे कभी कभी गांव में चूल्हे के अंदर कोयला रहता है, गरम गरम कोयला, लेकिन उसके ऊपर एक भस्म का आवरण होता है। तो सुबह स्त्रियां क्या करती है गांव में, सुबह का रसोई काम होने के बाद ऐसे ही रखती है कोयले को, हाँ, उसके ऊपर भस्म डालकर रखती है और दोपहर के समय भस्म को निकालकर वापिस इस्तेमाल करती है उसको। लेकिन अगर कोई सोचेगा भस्म ही भस्म पड़ा है, उंगली डालेगा अंदर तो जल जाएगा उंगली, जल जाएगा तुरंत उसको। इस तरह सुखदेव गोस्वामी देखने में पागल जैसे दिख रहे थे साधारण लोगों को, क्योंकि व्यास व्यास पुत्र थे वो, उनका शरीर नीला रंग का था, अभी वर्णन आने वाला है इधर, नीला रंग का था, उनके आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर थे, हाँ, और खूबसूरत थे देखने में, और कृष्ण का ही रंग था उनका भी शरीर, कृष्ण के महान भक्त भक्त हैं वो भगवत धाम में, वो राधा राधा जी के एक तोते हैं भगवत धाम में, लेकिन वही तोता शुका, हाँ, शुका और सारी दो तोते हैं राधा जी के, तो उनमें से एक तोता का नाम है शुक, हाँ, वो ही शुक सुखदेव के गोस्वामी के रूप में आते हैं इस दुनिया में, इसलिए वो इस दुनिया में उनके लिए किसी भी तरह का आसक्ति नहीं है, हमेशा भगवत चिंतन में रहते हैं। लेकिन हालांकि भगवत चिंतन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक ब्रह्म ज्ञानी का भूमिका कुछ समय के लिए निभाया इस दुनिया के लोगों को यह सिखाने के लिए। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं पहले वो निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन वो ही निराकार ब्रह्म में ध्यान करने वाले निराकार उपासक उस उपासना को छोड़कर भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं। यह बात सिखाने के लिए उन्होंने पहले ब्रह्मज्ञानी का भूमिका निभाया। एक श्लोक आता है उधर, यम प्रव्रजंतम अनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। इस तरह सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी गुणगान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी की जब जन्म हुआ, इसका एक बैकग्राउंड आपको बोलना, फ्लैशबैक बोलना पड़ेगा आपको, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्लैशबैक को, सब लोग जानते हैं, सिनेमा देखने वाले फ्लैशबैक जानते हैं। देखिए जगन्नाथपुरी के पास भुवनेश्वर है, आप लोग जानते हैं, भुवनेश्वर में एक पेड़ है, एक बड़े ग्राउंड में एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है एकाम्रवन। एकाम्रवन का मतलब है वो सारे जंगल में एक ही पेड़ है, और किसका पेड़ है, आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ के नीचे शिवजी और पार्वती बैठे थे दोनों। तो एक दिन की बात है, जब राधा राधा और कृष्ण भगवद्धाम लौटने ही वाले थे, ये शुक जो है शुक तोता वो बहुत खुश हो गया, अभी हम भूलोक छोड़कर गोलोक जाने वाले हैं, वो खुश हो गया बहुत। लेकिन भगवान ने शुक को बुलाकर बोला, देखो शुक तुमको टहरना पड़ेगा इधर, हम लोग जाएंगे वापस। तो शुक रोने लगा, वो बोला कि राधा कृष्ण की लीला हमेशा गाने वाले शुक और सारी ये दोनों तोता भगवान के विरह में कैसे इधर जी पाएंगे इस दुनिया में। लेकिन भगवान ने बोला, तुम्हारा बहुत खास सेवा है मेरे लिए, वो क्या है, तुम ठहरो इस दुनिया में, बाद में तुमको भी पता चलेगा, लेकिन कुछ समय के लिए तुमको ठहरना होगा। तो भगवान अपने धाम लौटने के बाद ये शुक तोता जो है उड़ता रहा इधर उधर, रोते हुए, हमेशा आंखों में आंसू बहता हो, ऐसे ऐसे रोते रोते उड़ते उड़ते वो एकाम्रवन में आकर बैठा, वो आम के पेड़ के अंदर, आम के पेड़ में आकर बैठा। तब शिवजी और पार्वती बैठे थे, लेकिन शिवजी पार्वती बैठने के पीछे भी एक फ्लैशबैक और एक कथा है, क्यों उधर आकर बैठे वो, क्योंकि एक दिन नारद जी शिव जी को मिलने के लिए आए थे उनके यहाँ, लेकिन शिव जी आउट ऑफ स्टेशन थे, कहीं तो बाहर गए थे, हाँ, तो पार्वती जी थी, देखा कि ब्रह्मचारी आए हैं नारद जी, उनको बिठा कर प्रसाद परोसा। तो पार्वती जी उनको प्रसाद परोसते हुए ऐसे बड़बड़ बात कर रही थी, वो बोल रहे थे कि मेरे पति जो हैं इतने महान हैं, हमसे कुछ भी नहीं छुपाते, ऐसे वो बोल रहे थे। तो नारद जी ने बोला, अच्छा वो कुछ भी नहीं छुपाते, मेरा एक प्रश्न है, शिव जी अपने गले में एक हड्डी का माला पहनते हैं जिसमें कपाल है, अनेक कपाल है उसमें, आपने कभी पूछा वो कपाल किसका कपाल पहन कर रखा है उन्होंने, ऐसे पूछा। वो देवी बोली कि नहीं नहीं उसके बारे में मैंने कभी नहीं पूछा। तो नारद बोले, इतने बाहर की चीज को भी आपको नहीं बोला है, अंदर की चीज कैसे आपको बताएंगे? ऐसे बोला नारद जी ने। तुरंत देवी पार्वती देवी कुपित हो गई, है ऐसा है क्या, अभी आएंगे वापस में पूछ लूंगी, बोला। नारद ने सोचा हमारा काम हो गया, अभी निकल जाओ इधर से। नारद जी निकल गए उधर से। उसके बाद शिव जी आए मुस्कुराते हुए, देवी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? देवी तो एक क्रुद्ध अवस्था में थी। वो बोले कि मुझे मालूम है आप बाहरी चीजों को भी नहीं बोलते, पता नहीं क्या क्या रहस्य है आपके जीवन में। तो शिव जी बोले कि नारद आकर गए क्या है सब कुछ आना है? कुछ तो बोलकर गया होगा आपको। तो उन्होंने बोला कि सीधा साधा पूछ लो मुझे ही, मैं बता दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि कपाल पहन कर रखे हैं, किसका कपाल है बोल दीजिए, मेरे से भी प्रिय कोई है क्या आपको? तब शिव जी बोले, देखो तुम सती बनकर जब आते हो, तुम दक्षायणी होकर आती हो, दक्ष के यज्ञ में जाकर तुम शरीर त्यागते हो, अपने आपको भस्म करा देते हो, उसके बाद मिलने वाली जो कपाल है, अलग अलग बार तुम इस दुनिया में आए हो, मैं वो सबको इकट्ठा करके रखा हूं, उसको ही मैं पाना हूं। ऐसे बोले शिव जी। वो सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है पहनते जाइए ऐसे है, मतलब हमारा ही कपाल को अपने पहना बहुत अच्छा। तो उसके बाद वो पूछा, उन्होंने पूछा, अगले बार नारद आने के पहले मैं अभी पूछ लेती हूँ आपको, इससे भी परम रहस्य कुछ है क्या आपके पास? शिव जी बोले, हाँ मेरे पास एक परम रहस्य है, लेकिन मैं साधारणतः बोलता नहीं हूं, क्योंकि इस दुनिया में लोग मेरे पास जो भी आते हैं सब छोटे मोटे चीज के लिए आते हैं। कोई बोलता है परीक्षा में पास करा दो, पास कराता हूँ, नौकरी दिला दो बोलता है, नौकरी दिला देता हूँ, शादी करा दो बोलते हैं, शादी करा देता हूँ, बच्चे नहीं है बच्चे दिला दो बोलते हैं, बच्चे भी देता हूँ, बाद में आकर बोलता है बच्चे को इंजीनियरिंग सीट दिला दो। ऐसे लोग मांगते जाते हैं, इनके पास परम रहस्यों को कैसे मैं बोल पाऊंगा, ये लोग लायक नहीं है सुनने के लिए, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। शिव जी बोले, मैं शांत होकर जपता हूँ, लेकिन कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए मैं जरूर बोलूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो पार्वती जी बोले कि क्या मैं योग्य नहीं हूं क्या? तो शिव जी दुविधा में पड़ गए, अभी क्या बोलना है क्या अभी? नहीं नहीं देवी, आप तो योग्य हो, ठीक है आपके लिए बोल दूंगा, लेकिन ये परम रहस्य है, कोई और सुनना नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो दोनों जाकर एक अकेला पेड़ जो था, एक आम्रवन, इसलिए उधर आकर बैठे, उधर आकर बैठे दोनों पेड़ के नीचे। शिव जी ने देखा कोई नहीं ना, कोई नहीं थे, लेकिन ऊपर कौन बैठा था?
तोता।
याद है ना आपको कथा, इतना कथा इधर उधर लेके जा रहा हूं, आप भूलना मत। शुक तोता जो है इधर उधर उड़कर उधर आकर बैठ गया था, लेकिन शिव जी ने देखा नहीं। उन्होंने बोला परम रहस्य क्या है देवी? परम रहस्य भागवत है, श्रीमद भागवतम। तो मैं 12 स्कंद मैं पूरा बोल दूंगा तुमको, ध्यान से सुनो। तो उन्होंने चालू किया 1 स्कंद, 2 स्कंद। तो सुनते सुनते 3 स्कंद में जब भगवान पहुंचे तो देवी को थोड़ा नींद आ गया बीच में। तो पहले तो बोलती गई, तो 3 स्कंद होने के बाद थोड़ा थक गई, आंख बंद कर लिया। लेकिन शिव जी भी ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठकर आंख बंद करके बोल रहे थे। तो तोता ने सोचा कि अगर ये देवी सो जाएगी तो कथा भी बंद हो जाएगा, कथा का अमृत प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बोलने लगा। वो शिव जी बोलेंगे समझा ना, होता था ऊपर से बोलता था। ऐसे बोल बोल कर पूरा कथा हो गया 12 स्कंद। होने के बाद देवी उठी, पूछा कि आप 3 स्कंद के आगे नहीं किया आपने कथा, क्या हो गया? तो भगवान बोले, अरे तुमने बोला, किसने बोला? तभी उन्होंने देखा ऊपर तोता बैठा है। अरे मैंने बोला कोई और नहीं सुनना चाहिए, सुन लिया, पकड़ो इसको, ऐसे अपने हाथ में त्रिशूल लेकर भाग रहे थे पीछे। तो तोता उड़ गया। ऐसे तोता दूर प्रदेश में उड़कर व्यास देव की धर्मपत्नी के मुख के अंदर गया, वो अंदर जाकर उनके योनि में जाकर बैठ गया। तो वो ही 16 साल के लिए बाहर नहीं आया वो तोता, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार वो ही तोता राधा जी की तोता, देखिए ऐसा वर्णन है शास्त्र में, राधा जी उस तोते को अपने उंगली में लेती थी ऐसे और बोलती थी कृष्ण बोलो, बोलती थी कृष्ण बोलता था, तो उसको अनार खिलाती थी वो राधा जी। ऐसे राधा जी के उंगली में बैठकर अनार खाने वाले शुकदेव गोस्वामी, आप सोच सकते हैं कितना पहुंचा हुआ आत्मा होंगे वो। तो अभी वेदव्यास की धर्मपत्नी ने बोला अपने पति को, ये गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे तो 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, अभी मेरा 16 साल हो गया, आने रहा बच्चा अंदर से क्या किया जाए। तो वेदव्यास ने बच्चे को आश्वासन दिया, ये बच्चे डरो मत, मुझे मालूम है कि तुम बाहर की दुनिया देखना नहीं चाहते क्योंकि माया भी दुनिया है, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं तुम आ जाओ माया में नहीं पड़ोगे। तो तभी 16 साल के बाद बाहर निकला बच्चा, और उस बच्चा इस रूप में निकला जो अभी आगे के दो श्लोकों में वर्णन दिया गया है। इधर बताया गया कि 26th वर्ष से तम द्यष्ट वर्षम सुकुमार पाद, देखिए द्वि अष्ट का मतलब है दो आठ, कितना है 16। तम द्यष्ट वर्षम सुकुमार पाद, हाँ सुखदेव का उम्र था 16 और उनके पांव एकदम कोमल था। करोर बाह्वम शकपो लगात्रम, उनके कर उनके ऊरु, ऊर का मतलब है जांग, और उनके बाहु और उनके अंश कंधे और उनके कपोल और उनके गात्रम उनके शरीर, चारु का मतलब है सुंदर, एकदम सुंदर थे। अलग अलग अंग के बारे में वर्णन है इधर, कैसे वो दिख रहे थे वो। चार्वाय तक्षोन्न सतुल्य कर्ण, तभी कान के बारे में भी बोल रहे हैं, और सुब्रुवाननम कंबु सुजात कंठम, हाँ उनके जो भ्रुकुटी थे बहुत सुंदर थे वो भी, उनके चेहरा भी बहुत सुंदर था, और इस तरह सुजात कंठम उनके कंठ भी बहुत खूबसूरत था, इस तरह उनके शरीर के वर्णन है इधर। इस रूप में एक 16 वयस के बालक के रूप में सुखदेव गोस्वामी अवतरित हुए, बाहर आए अपने माँ के गर्भ से। लेकिन आते ही क्या क्या मालूम है आपको, आते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेत मुपेत कृत्यम, तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। क्यों? उन्होंने सोचा कि अगर माता पिता के साथ घर में रहूंगा, संसार लोगों के साथ रहूंगा तो मैं बद्ध हो जाऊंगा, मैं इस तरह सोचकर वो सीधा जंगल की ओर चल पड़े। उस समय कुछ स्त्रियां तालाब में नहा रही थी, और उन्होंने देखा सुखदेव को, देखा सुखदेव के पीछे उनके पिताजी वेदव्यास, वो भागते हुए गए, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र बुलाया। लेकिन उन्होंने जब पुत्र पुत्र नाम से पुकारा उनको, सब पेड़ पौधे भी पुत्र पुत्र कहने लगे। इसके पीछे आचार्यों ने वर्णन दिया है, टीका दिया है, वो बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी की खूबसूरती, उनकी दिव्य अनासक्त चेतना इत्यादि को देखकर पेड़ भी पिघलते थे, उनके गुणों को देखकर। तो वो व्यासदेव के ही पुत्र नहीं थे, लेकिन पेड़ों ने भी सोचा ये हमारा पुत्र भी है, इसलिए वो भी पुत्र पुत्र करके पुकारा उनको। तो गए तो वेदव्यास ने देखा कि जब वेदव्यास उसके पीछे गए, वो स्त्रियां जो नहा रही थी वो तुरंत कपड़े पहन लिया। तो वेदव्यास ने उनको पूछा कि मैं तो तुम्हारे दादाजी के बराबर हूं, इतना वयस वाला हूं, वयोवृद्ध हूं, लेकिन सुखदेव जो है वो अभी 16 वयस का लड़का है, लेकिन उसको आप लोगों ने देखा, आपको संकोच क्यों नहीं हुआ? तब वो स्त्रियों ने बोला, देखिए ये बालक सुखदेव जो है इसको स्त्री पुरुष के बीच में फर्क मालूम नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुष है कि ये सबको आत्मा के स्तर पर देखता है, ये निर्मल है, इसका शुद्ध चेतना है। तो हम लोग, भगवान ने स्त्रियों को ऐसे एक योग्यता दिया है, कोई कामुक व्यक्ति हो वो स्त्रियों के साथ कुछ लंपटता करता है, कुछ व्यवहार दुर्व्यवहार करने के लिए प्रयत्न करता तो स्त्रियां तुरंत समझ जाते हैं, ऐसे समझने के लिए भगवान ने उनको बुद्धि दिया है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं उधर। लेकिन ये स्त्रियों ने देखा कि देखिए अभी इधर एक छोटा बालक हो 2-3 उम्र का, इधर से वो माता जी की साइड में जाएगा, कभी देखा आपने, और कुछ समय के बाद माता से पिता के पास आएगा वो, और दोनों पक्ष में उनके लिए स्वागत है, कुछ मना नहीं है। लेकिन अगर एक 16 वयस का 18 वयस का लड़का इधर से उधर जाकर बैठता है बीच में, सब माता जी चिल्लाएंगे, कौन क्या हो गया, इसका नट लूज हो गया इसका है? क्या पागल हो गया क्या, पूछेंगे ना, क्योंकि बड़ा बड़ा होने के बाद वासनाएं उठते हैं, जिसके कारण लोग तुरंत समझ जाते हैं कि इस तरह स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है इस तरह है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का वयस तो 16 था, लेकिन वो वासनाओं से मुक्त थे, वो सिद्ध पुरुष थे, तो उसको स्त्रियों ने भी देख लिया ऐसे। तो ऐसे जंगल की ओर चल पड़े तो वेदव्यास जी रोने लगे पुत्र स्नेह के वश में आकर। तो जंगल जाने के बाद जंगल में उनको सुखदेव गोस्वामी ने अचानक लकड़हारों का कुछ दो लकड़हारे थे जो गा रहे थे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण योर कर्णकारम बिभ्रत वास कनक कपिशम वै जयंतीम चमालाम रंद्रान वेणु रदर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस तरह गा रहे थे, इसका अनुवाद इस प्रकार है, वो व्यक्ति कितने खूबसूरत है, वो मोर पंख पहना है, पीतांबर सूर्य के समान चमक रहा है, उसके शरीर में विविध आभूषण है, वो नीले रंग का है, बादल के रंग का है, और वो अपने मुंह में एक मुरली को रखकर बजाता है, और वैजयंती माला पहना है, और त्रिभंग ललित रूप में वो खड़े रहता है और गाय बछड़ों को चराता है, और उसके इर्द गिर्द उसके सब गोप मित्र हैं जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह के सुंदर स्वरूप वाले कृष्ण से बढ़कर इस दुनिया में कौन है और भी इससे ज्यादा सुंदर, इस तरह के वो लोग एक गीत गा रहे थे। इसको सुनते ही सुखदेव गोस्वामी के रोम खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा, आंखों में से आंसू बहने लगा प्रेमाश्रु। तुरंत जाकर उनको पूछा कि अरे तुम किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी का एक नाटक निभाया कुछ समय के लिए, और दूसरा लकड़हारा और एक गीत गाया, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय अप्यसाध्वि लेभे गतिम दात्रिमुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। मैं किस व्यक्ति की शरण ले सकता हूं इस दुनिया में, उस व्यक्ति को छोड़कर जिन्होंने पूतना नामक राक्षसी के, जो राक्षसी अपने स्थान में विष लेप करके आई थी कृष्ण को मारने की इच्छा से, ऐसे एक ईर्ष्यालु वैरी भावना के साथ आई हुई पूतना को भी उन्होंने अपने धात्री का स्थान दिया अपने स्वधाम में, अपने गोलोक धाम में। इस तरह के कृपालु, अति कृपालु, परम दयालु व्यक्ति की आश्रय छोड़कर मैं किस और व्यक्ति का आश्रय में ले सकता हूं, ऐसे दूसरा लकड़हारे ने गाया। सुनते ही बेहोश हो पड़े हैं सुखदेव गोस्वामी, और होश आने के बाद उन्होंने पूछा, अरे बता दो किस व्यक्ति की गुणगान चल रहा है आप लोग कर रहे हो। तो वो लोगों ने कृष्ण के बारे में बोला, तब उन्होंने बोला कि किधर सुना आप लोग ये सब श्लोक। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे पिताजी ही हमारे गुरु जी हैं। तो तुरंत वो जंगल छोड़कर वापस लौट आए, गए घर आ गए अपने पिताजी के पास, पिताजी के पास बैठकर पूरा भागवत सुना उनसे। तो भागवत सुनने के बाद ये अभी जो वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं ये आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी अभी विचरण कर रहे हैं दुनिया में अलग अलग स्थानों में, क्योंकि वो कुछ कपड़े भी नहीं पहनते थे, कुछ जैसे आप लोग जानते हो जैन्स में दिगंबर है श्वेतांबर है दो लोग हैं, तो दिगंबर लोग पहनते नहीं कुछ, उसका कारण है वो लोग बोलते हैं कि भगवान ने सृष्टि के समय हमको कपड़ा नहीं दिया इसलिए हम कपड़ा कभी नहीं लेंगे, ऐसे बच्चे जैसे रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग नहीं पहनेंगे तो हमको बड़ा समस्या होगा, क्योंकि हम शारीरिक चेतना में हैं, जो शारीरिक चेतना से ऊपर उठ गए वो लोग या तो छोटा कॉपिन पहनते हैं नहीं तो कपड़े पहनते नहीं है वो लोग, ऐसे हैं दिगंबर ऐसे हैं। तो ये भी ऐसे ही दिगंबर थे, ऐसे जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसे अभी तो वो प्रेमावेश में आकर सदा राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए ऐसे जा रहे हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि पिताजी से भागवत सुनने के बाद उन्होंने भक्त का भूमिका निभाया उसके बाद, इसलिए एक श्लोक आता है भागवत में, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंता अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। भगवान हरि के गुणाधीशियों को कोई सुनेगा, इतने महान गुण है भगवान हरि के, इतने महान गुण है, ज्ञानी पुरुष भी अपने ब्रह्मलीन होने की इच्छा को त्याग कर भगवान कृष्ण की खूबसूरती, उनके गुण, उनके लीला चेष्टा इत्यादि में रमते हैं, और वो लोग ब्रह्म ज्योति के ओंकार जिसके ऊपर वो पहले ध्यान करते थे, इस तरह के ध्यान को छोड़ देते हैं। जैसे चतुष्कुमार भी गए थे वैकुंठ द्वार पर, तो जय विजय ने अंदर नहीं छोड़ा उनको, लेकिन विष्णु जब पहुंचे द्वार में, उनके श्री चरणों में तुलसी जो रखा जाता है, उस तुलसी का मकरंद चतुष्कुमारों के नासिका के अंदर पहुंच गया। उसका सुगंध लेकर उनके रोम कड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कंपन होने लगा शरीर में। तत्क्षण वो विष्णु के भक्त बन गए, हालांकि पहले वो निराकार उपासक ज्ञानी थे वो लोग। इस तरह से शास्त्र में प्राप्त होता है हमें अनेक उदाहरण, जिधर हम देखते हैं कि निर्विकार निराकार उपासक भी बाद में भगवान के रूप का उपासना करते हैं और भक्त बन जाते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे शास्त्र में कोई भक्त निराकारवादी बन गया, आप नहीं सुनेंगे, लेकिन निराकार व्यक्ति निराकार उपासक भक्त बनता है। ये चतुष्कुमार और सुखदेव गोस्वामी, इनके उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी भागवत पढ़ने के बाद, अपने पिताजी से सुनने के बाद, इनको उनके गोलोक में जो शुका तोता का जो भूमिका है उसका पूर्ण स्मरण आ गया उनको। अभी आगे आप सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी इधर जो आ रहे हैं, अभी एक आश्चर्यजनक बात इधर बताया जाएगा कि वेदव्यास खुद आकर उनके सत्र में बैठेंगे। वेदव्यास, नारद और ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, लेकिन ये थे 16 वयस का, लेकिन वेदव्यास और नारद जी तो वेदव्यास का भी गुरु जी थे। इसके आप जरा सोच लीजिए, अगर आपको प्रवचन देना हो, आपके गुरु बैठकर सुन रहे हैं और उनके भी गुरु बैठकर सुन रहे हैं, आपको संकोच होगा कि नहीं? लेकिन ये लोग सुनने के लिए क्यों आए उनसे, इसका एक कारण है। भागवत कथा बोलने की क्षमता सिर्फ बुद्धि की बात नहीं है, भागवत कथा बोलने के लिए भी हमें राधा जी की और राधा कृष्ण की एक आशीर्वाद और शक्तिपात की जरूरत है। जैसे एक लोहा लेकर अगर आप आग में डाल दोगे, वो तप जाएगा पूरा, है ना, पहले लाल लाल हो जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा वो, और उसके अंदर एक आग का ही गुण आ जाएगा उसमें। उसको लेकर एक पेपर को भी आप जला सकते हो आप। इस तरह भागवत बोलने के लिए, जिस तरह अगर किसी के अंदर भूत सवार हो गया, वो कुछ भी बड़बड़ करता है, लेकिन किसी के अंदर भगवान सवार हो गए तो भगवत संबंधित विषयों को बोलने के लिए उसको शक्ति प्रदान किया जाता है। इसको संस्कृत में उत्तम श्लोक बोलते हैं। उत्तम श्लोक का मतलब क्या है? जैसे भगवान विष्णु ने देखा ध्रुव महाराज को, 5 वयस का लड़का कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन गुरुकुल नहीं गया है, संस्कृत नहीं पढ़ा है, उसके जिह्वा जो है ऐसे चिपक गया है, कुछ बोल ही नहीं पाया वो। तो विष्णु ने सोचा क्या किया जाए अभी ध्रुव महाराज को, तो उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था, तो या तो भगवान विष्णु शंख को लेकर बजा सकते थे, बजाते थे तो तुरंत ध्रुव महाराज जग जाता था और शायद हो सकता है ध्रुव महाराज बोलना चालू करेगा। लेकिन भगवान ने सोचा शंख बजाने के बदले शंख को ध्रुव के सर में रखता हूं, उसके मुंह बजाना अच्छा है, क्योंकि मुंह से कुछ श्लोक बोलेगा, बाद में एनबीसीसी में अनेक भक्त लोग आएंगे, वो भी पढ़ेंगे भागवत, पढ़कर उन श्लोकों को सुनेंगे, लाभ होगा उनको भी। तो भगवान ने शंख उनके सर के ऊपर ऐसे रखा, रखते ही ध्रुव महाराज ऐसे श्लोक बोलने लगा सुंदर सुंदर भगवान के गुणगान में। इस तरह हमें भागवत हम तैयारी करके नहीं बोल पाएंगे, जितना भी तैयारी करो इधर आने के बाद भूल जाएंगे। इसलिए हम भागवत को बोलना है तो हमें सर्वप्रथम जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम अयोग्य हैं। लेकिन गुरु और गुरु परंपरा के आचार्यगण और खास करके राधा जी, उनकी इच्छा हो तो हम कुछ दो शब्द बोल पाएंगे। मैंने सुना एक बार एक मटका था बगीचे में, तो माली उस मटके से पानी ले लेकर पौधों को डालता था वो, लेकिन वो मटका में एक दिन एक छिद्र आ गया उसमें, तो वो माली ने उस मटके को एक कोने में रख दिया, इस्तेमाल नहीं किया उसको, तो बाकी नए मटकों को इस्तेमाल किया उसने। तो यह मटका को बहुत बुरा लगा, अरे हम अभी कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही कोने में को रख दिया है, हमारे जीवन का जीवन पूरा बर्बाद हो गया है, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे उनको लगा। तो जब उसको ऐसे लगा तो उसके माली ने आया, माली उधर आ पहुंचा, तुरंत उस पुराने मटके को ले लिया हाथ में, उसको अपने पत्नी को दिया और उन्होंने अलग अलग रंग बिरंगे ये बनाया, जैसे रंगोली बनाते ना ऐसे ही बनाया, उसमें डेकोरेशन वगैरह किया। करने के बाद उसमें बगीचे से अलग अलग रंग बिरंगे फूल, सुगंधी फूलों को लेकर उसके अंदर डालकर वो जमींदार के टेबल में रख दिया उसको। तो वो मटका को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैं पानी सींचने के लिए भी योग्य नहीं हूं, लेकिन हमको इतना बड़ा टेबल में, जमींदार के टेबल में रख दिया उसने, और इतना ही नहीं, उनको अलंकार करके रख दिया हमको उधर। तो भक्त को ऐसे ही सोचना चाहिए, भागवत अगर भागवत के ऊपर बोलना हो तो हम भी वो मटके के समान, हमारे अंदर अनेक त्रुटियां हैं, अनेक छिद्र हैं, लेकिन गुरु हमको श्रृंगार करके अच्छा करके हमको इधर बिठा देते हैं, और रंग बिरंगे फूल जैसे उसके ऊपर डाला गया, इस तरह गुरु के उपदेश से, गुरु परंपरा से मिलने वाले दिव्य ज्ञान हम उनसे प्राप्त करके हम दोहराते हैं उसको। इसलिए भागवत बोलने के लिए, वक्ता बनने के लिए, वक्ता बनना आसान काम नहीं है, ये आशीर्वाद से प्राप्त होता है। अभी वेद व्यास बोल सकते हैं भागवत के ऊपर, नारद जी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग बैठकर क्यों सुनते हैं सुखदेव से, उनको मालूम है कि सुखदेव राधा जी का तोता है, इसलिए भगवत धाम में राधा कृष्ण की लीला जानता है, और गोपियों की लीला जानता है, गोपों की जानता है, गाय बचनों की जानता है, ये सुख और सारी ये दो तोते जो है ना, ये राधा और कृष्ण से संदेश लेके आकर एक पेड़ में बैठकर दोनों चर्चा करते हैं आपस में, अपने आपस में बीच में। तो इनको मालूम था कि इतना निकट पार्षद है, वयस में छोटा हो सकता है लेकिन इसका साक्षात्कार बड़ा है, इसलिए हम इनसे सुनेंगे। इस भावना को लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनसे सुनना चाहते थे। अभी देखिए क्या होगा आगे, आप देखेंगे। तो उनकी रूप की वर्णन दिया गया इधर, अभी आगे भी उनके रूप का वर्णन वही दिया है, 27 में और 28 में, 28 में पढ़ेंगे। श्यामं सदापि व्यवयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्तितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए।
वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे, अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी ऊपर प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृत शास्त्र में पटु थे, अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया।
देखिए जब वो सड़क में चलते थे, मूर्ख लोग ऐसे कुछ बच्चे, कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष, ये लोग उनके ऊपर पत्थर मार रहे थे, उनका मालूम नहीं था ये कौन है। कुछ लोग उनके मजाक उड़ा रहे थे, कौन ऐसे चल रहा है, नंगा चल रहा है ऐसे। लेकिन जब ये सभा में आ पहुंचे गंगा के तट में, इसलिए उधर बताया गया था उस श्लोक में, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो, हमने पढ़ा था। जब वो सभा में आते ही सब ऋषि मुनिया जो बैठे थे गंगा के तट में सब उठ गए, सब उठकर हाथ जोड़कर उनकी वंदना करने लगे, नमस्कार करने लगे उनको। जब इन लोगों ने देखा कि साधारण पुरुष नहीं है ये, महात्मा पुरुष है, तो सब बच्चे स्त्रियां सब उधर उनको छोड़कर निकल गए उधर से। तो उसके आगे क्या हुआ बताते हैं, 19वां श्लोक में बताया गया है। स विष्णु रातो तिथय आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्बका महासने सोपविवेश पूजितः।
महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रथ अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रचित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए।
और एक श्लोक पढ़ लीजिए अनुवाद 33वां।
तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए।
इंपॉर्टेंट पढ़िए तात्पर्य भी।
साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे।
परशुराम भी थे उधर। नारद व्यासदेव परशुराम,
इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्म ऋषि थे, न राज ऋषि या देव ऋषि, नहीं वे नारद व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त को अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए।
प्रशांतमासीन अकुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतो व्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृतांजलिर् नत्वा गिरा सुनृतयान् वपृच्छत्।
तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव में बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा।
देखिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी गुरु को स्वीकारने के संबंध में बोल रहे हैं। इधर एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के पास उस समय नहीं आए जब परीक्षित सारे दुनिया का राजा था। अभी अपने राज्य कार्य इत्यादि को छोड़कर सिर्फ ये कौपीन पहनकर गंगा के तट में आकर बैठा है राजा। कौन? परीक्षित। और सुखदेव गोस्वामी तो दिगंबर हैं, वो आ रहे हैं। इस तरह दोनों विरक्त पुरुष हैं। इस अवस्था में आकर भागवत बोलेंगे उसको और वो भागवत पूरे बोलने के बाद निकल जाएंगे उधर से। बाकी कुछ संबंध नहीं है क्योंकि हम धर्म की प्रचार करना चाहते हैं। जो वक्ता जो है उन वक्ता के अंदर किसी भी तरह का भौतिक अपेक्षा नहीं होना चाहिए। आजकल अनेक भागवत के वक्ता हैं जो बोलते हैं कि भागवत कथा 7 दिन करने के लिए 5 लाख 10 लाख या तो 20 लाख ऐसे कुछ पैसा रखते हैं। और जब पैसा लेते हैं जो श्रोतागण जो सुनना चाहते हैं उनको उनके मनोरंजन के लिए भी बोलना पड़ता है उनको, नहीं तो वो लोग बोलेंगे इतना पैसा तुमको भरा हमने क्या हमको हंसाते नहीं है? हमको हंसाओ, हमको आज के आनंद की जाए है? ऐसे लोग आनंद पाना चाहते हैं। तो पैसे लेकर इस तरह जो किया जाता है शास्त्र में इसके लिए अनुमति नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर लोग अपने हृदय से कुछ मंदिर बांधने के लिए भगवान के लिए पैसा देते हैं, नहीं तो भागवत वितरण के लिए पैसा देते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन प्रोफेशनल रिसाइटर नाम से प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भागवत वक्ता पैसा वसूल करते हैं लोगों से, वो शुद्ध कृष्ण शिक्षा दे नहीं पाएंगे। वो उनको लगेगा कि अरे ये लोग 20 लाख दिया है, अगले साल अगर उनको बुलाना हो तो इनके इच्छा अनुसार बोलना पड़ेगा हमको, उनके ट्यून के अनुसार नाचेंगे वो। इसलिए हम इस्कॉन मंदिर में जो प्रवचन देते हैं ये प्रवचन अभी जो है इसमें हम वक्ता और श्रोता के बीच में किसी भी तरह का कुछ कंडीशन नहीं है। अभी आप लोग अगर अटेंडेंस नहीं देंगे तो आपको दंड मिलेगा क्या? आपको नहीं है इस तरह, अभी हमको इस कथा के द्वारा पैसे देने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमको बोलने के लिए भी डर नहीं है। जो भी बोलना हो करेक्ट है ना, भागवत अच्छे से कुछ बोलना हो आप अच्छा समझिए बुरा समझिए, जो सत्य है हम बोल ही देंगे हम, ठीक है ना। इसलिए बताया जा रहा है इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब इस तरह हम सुनते हैं भागवत कथा सुनते हैं, वो हम एक पारदर्शी बनकर बताना चाहिए भागवत। भगवान कुछ दुनिया को देना चाहते हैं, हम एक पारदर्शी एक निमित्त बनना चाहिए ताकि भगवान की भेंट को हम लोगों को प्रदान कर सके। तो परीक्षित महाराज देखा कि सुखदेव गोस्वामी शांति से बैठ गए, तो उनको अपने आदर सम्मान प्रकट करने के लिए उनके निकट जाकर दंडवत प्रणाम किया और बहुत मीठे आवाज में अपने दोनों कृतांजलि के रूप में, ये कृतांजलि है, दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से बात किया। परीक्षित वाच, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्र बन्धवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः।
भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं।
अपने आपको कोस रहे हैं कौन? परीक्षित। ये बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो तीर्थ के बराबर हो, तो तीर्थ स्थल में लोग जाते हैं अपने पाप को मिटाने के लिए, पुण्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं लोग, और आप खुद ही चलने फिरने वाले तीर्थ के बराबर हो आप, क्योंकि आपके हृदय में भगवान वासुदेव बैठे हैं, सदा उनकी स्मरण कर रहे हैं, आपके मुखों में भगवान का नाम लेते जा रहे हैं आप, और आप शास्त्र को पढ़कर उसके सार को निचोड़ कर दुनिया को प्रदान करने के लिए सक्षम है, और ऐसे चलने फिरने वाले एक पवित्र पुरुष आप जैसे महान पुरुष के साथ संग करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। लेकिन हम लोग तो क्षत्र बंधु हैं, ऐसे बोलते हैं। देखिए, ब्रह्म बंधु का मतलब है ब्राह्मण के परिवार में जन्मा है, लेकिन ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, ब्राह्मण के गुण नहीं है उसमें। इस तरह क्षत्र बंधु का मतलब है क्षत्रिय जन्म परिवार में जन्मा है, लेकिन क्षत्रिय का गुण नहीं है उसमें। जैसे कुछ कुछ बच्चे गुरुकुल में जाते हैं भारत में कुछ पूजा पाठ वगैरह सीखने के लिए, जब घर जाते हैं सोचते हैं कि एक हफ्ता छुट्टी है, अभी हम सिनेमा देखकर जाएंगे, क्योंकि गुरुकुल में नहीं छोड़ेंगे हमको, तो सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। कभी कभी ब्राह्मण का जाने भी पाते हैं, लेकिन अंडा भी खाते हैं। इसलिए वो लोगों को ब्रह्म बंधु कहा गया है। ऐसे इस तरह अपने आप को उन्होंने छत्र बंधु क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जंगल में मैं जब शिकार के लिए गया था, तब एक मृत सर्प को एक ऋषि के गले में लटका दिया। इस तरह मैं सीधा साधा क्षत्रिय नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मणों को अपमान करने वाला एक पतित क्षत्र बंधु हूं, इस तरह अपने बारे में सोचा। लेकिन आप लोगों को मैंने पूर्व एक सत्र में बहुत समय बिताकर ये बात को समझाया कि परीक्षित के ऊपर कुछ नहीं गलती था, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि ये मृत सर्प को ये मुनि के उनके सर में लटका, उनके गले में लटकाए, ताकि उसके कारण उनके मुनि पुत्र का शाप इनको मिले, तो 7 दिन में शरीर त्यागना चाहिए और उसमें भागवत सुनना चाहिए। ये सब भगवान का एकदम पहले से प्लानिंग सेटअप किया था भगवान ने, एकदम उनका मालूम था भगवान को, तो भगवान की इच्छा अनुसार उन्होंने किया। फिर भी अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं क्षत्र बंधु हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ऐसे बोल रहे हैं, तो अपने आप को कोस रहे हैं इस तरह। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। हाँ बढ़िया।
आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या।
देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि एक व्यक्ति को, साधु महात्माओं को कैसे उनकी स्वागत करना चाहिए, उनके संग कैसे करना चाहिए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, स्मरणात् का मतलब है, आप जरा प्रभुपाद के बारे में मन में सोच भी लीजिए, सोचने से भी हमें बहुत आनंद आएगा। हा? क्योंकि महान भक्तों के बारे में स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं। ऐसे एक गीत भी है ना, गंगर परस होइले पश्चाते पवन दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम आगे न के हो ना। यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ए वैष्णव गोसाई मेरे ऊपर एक बार करुणा कीजिए, मैं पतित हूं और आप पतित पावन हो, आपके बिना मैं कैसे मैं ऊपर उठूंगा। और गंगा जो है उसमें नहाने के बाद हमारे पाप मिटता है, लेकिन आप जैसे वैष्णव को देखने मात्र से हमारा पाप मिट जाता है। गंग दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, ऐसे बताते हैं। ये भी यही बोल रहे हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम। हाँ, अगर साधु महात्माओं को स्मरण करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। अगर किम पुनः दर्शन बोलते हैं, दर्शन का मतलब है उनको आंखों के सामने अगर हम देख सकते हैं, तो श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बताते हैं कि भगवान के भक्त को देखना भगवान के श्री चरणों को देखने के बराबर है, ऐसे बताते हैं। अगर कोई कृष्ण के पद कमलों को देखना चाहता है तो वो साधुओं को देखना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा लोग कृष्ण के श्री चरणों में हमेशा रहते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो किम पुनः दर्शन, आगे बोलते हैं स्पर्श। अगर झुक कर उनके उनके पांव को छूने के लिए अगर किसी को मौका मिलता है, अगर इस्कान में आप लोगों को मालूम है पांव को छूना नहीं चाहिए, कितने लोगों को मालूम है, इस्कान में हम छोड़ते नहीं। जैसे अगर आपको विठल जी की पांव छूना हो तो उसके लिए अनुमति है ना पंडरपुर में, विठल रखुमाय की। लेकिन इधर राधा वृंदावन चंद्र की पांव नहीं छू नहीं पाएंगे आप, फोटो में छू सकते हैं आप, थोड़ा उसके लिए अलग नियम है हमारे इस्कान में। तो इस तरह से हम साधुओं को भी, महाराष्ट्र में आदत है कि प्रभु जी माता जी बच्चे सब पांव छूते हैं, इसलिए हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं, लोग देखेंगे पांव अंदर है ठीक है, दंडवत करके निकल जाते हैं लोग। लेकिन वैदिक संस्कृति में साधुओं के पांव धोना और उस जल को अपने सर के ऊपर डालना और परिवार वालों के सर के ऊपर डालना, ये सब एक एक तरह का रीति रिवाज रखा गया है, खास करके उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि उनके पांव को स्पर्श करने के लिए मौका मिलेगा तो और भी बढ़िया है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्धयन्ति वैगृहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी बोलते हैं। आदि भी का मतलब क्या है, अगर कोई साधु आता है आपके घर में, अगर कुछ समय बैठ कर वो कुछ बोलता है तो अगर आप सुन पाते हो तो कितना बड़ा भाग्यशाली हो आप। सुनना ही नहीं, अगर समझ गए तो और भी भाग्यशाली हो। समझ कर अगर आप प्रश्न करना चाहते हो और वो भी प्रश्न सुनने के लिए तैयार है तो और भी भाग्यशाली है। लेकिन अगर आपके प्रश्न का जवाब मिल गया और वो भी आप समझ गए तो आप परम भाग्यशाली है। इस तरह हम इसको आगे उसको आदि बोलते हैं, आदि भी। तो हम लोग ये बात समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे साधु महात्मा की गुणगान इधर चल रहा है परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज के हृदय में बड़ा कृतज्ञता है सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि जो संघ उनको प्राप्त हो रहा है उसकी महत्ता वो जानता है। देखिए, हम लोग अपने जीवन में आजकल इतना यूट्यूब में लोगों को प्रवचन मिल जाता है, कुछ भी आप सुन सकते हैं। ये एक व्यक्ति बोला कि उसके पास जुक बॉक्स है, उसमें 50,000 लेक्चर्स है। तो मैंने बोला 50,000 में कितना तुमने सुना है अभी तक बताओ। वो बोला अभी तक चालू नहीं किया है सुनना, इधर उधर मैं कलेक्ट करके रखता हूँ। अरे लोग ऐसे जीवन पर अर्जित करके रखते रखते मर ही जाते हैं, पता नहीं कब सुनेंगे हा? इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि आजकल बहुत आसानी से आपको किसी भी व्यक्ति का प्रवचन सुनना हो आपको मिल जाता है। इसमें समस्या क्या है, हम उसको सस्ते लेंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति रहता था, उसके घर इधर से जगन्नाथपुरी का मंदिर जैसे हमारे इधर से वो हमारे प्रसाद महल है उतना ही दूर था उसका। तो उसके नाता रिश्ता लोग एक बार आए थे, उनको पूछा कि हम लोग अभी आए हैं जगन्नाथपुरी में, हम थोड़ा भगवान का दर्शन करके आते हैं। वो लोग बोले, ये बोला ठीक है जाकर आओ बोला। तो वो लोग दर्शन करके आने के बाद उनको पूछा कि अरे तुम दर्शन लेते हो क्या, पूछा उन्होंने। वो बोला कि जगन्नाथपुरी में आने के बाद 10 साल हो गया अभी तक दर्शन लिया नहीं मैं, बोला उसने। लिया नहीं, वो बोला लोगों को, फिर क्या ये तो इतना निकट है कभी भी ले सकता हूँ, ऐसे बोला उसने, कभी भी ले सकता हूँ दूर नहीं है, ऐसे बोलते बोलते कभी भी दर्शन नहीं लिया हुआ। सो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट इज इट, फेमिलियरिटी ब्रीड अति परिचयात अवज्ञात, वो पॉइंट। तो देखिए इधर जो बरसाना में, इधर बरसाना का बिल्डिंग है ना, कुछ सालों के पहले मेरे बहन आई थी इधर, उसमें एक घर खरीदने के लिए। दोनों मेरे बहन और उनके पति दोनों ने बोला कि हमको टेंपल फेसिंग फ्लैट चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने पूछा आपको पीछे एकदम अच्छा ग्रीनरी दिखाई देगा, आपको हरियाली, आपको हरियाली देखना है टेंपल फेसिंग देखना है। दोनों ने क्या बोला, टेंपल फेसिंग देखना क्योंकि गोपुरम देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में वो लोग 6 महीने बाद आए, उनको वो फ्लैट अलॉट हो गया था जो वो हरियाली फेसिंग है, वो फ्लैट अलॉट हो गया था। तो मेरे बहन के जो पति थे वो थोड़े कुपित हो गए उसको सुनकर, उन्होंने बोला कि इधर आपने क्यों फिक्स नहीं किया। वो लोग बोले कि हम ठीक तरह से नहीं समझे आपको, हमने सोचा था कि आपको इस साइड में चाहिए, आपने लिख कर नहीं दिया, ऐसे ओरली बोला, ऐसे बोला। मेरे बहन ने बोला उनको, देखो ये भगवान का आयोजन है कि हमको फ्लैट उस साइड में मिला है, बोला। तो उनको आश्चर्य हुआ, ये क्या भगवान का आयोजन है, भगवान का आयोजन है तो दर्शन मिलना चाहिए हमको। तो मैं सिस्टर बोली, अगर फ्लैट उस ओर होता तो आपको नीचे उतर कर मंदिर में दर्शन के लिए आना पड़ेगा, लेकिन इधर टेम्पल फेसिंग फ्लैट मिल गया तो कभी इधर आओगे नहीं तुम, इसलिए भगवान ने तुमको उधर दे दिया। क्योंकि सामने रहने वाले कभी सोचते हैं कि अरे हम तो गोपुरम देखते रहते हैं, अंदर जाकर क्या दर्शन लेना, गोपुरम को देखो चक्र को देखो बस हो गया, ऐसे लोग सोचते हैं। कितने लोग समझ आए पॉइंट, समझ गए आप लोग? अगर कोई नहीं समझे तो समझा देना आप। लेकिन बोलने का पॉइंट क्या है, फ्लैट पीछे होने से लोग उतर कर नीचे उतर कर आते हैं ना मंदिर में, ऐसे कभी कभी मंदिर के निकट घर होने से लोग प्रवचन के लिए आते नहीं, कभी कभी लोग 10-20 किलोमीटर दूर से आते हैं सुनने के लिए। इसलिए इधर बताया जा रहा है कि हम साधुओं की संग करने के लिए आतुरता जब तक नहीं है तब तक हमारे चित्त नहीं शुद्ध होगा। अभी साधुओं के संग करने से क्या लाभ है वो जानना भी आवश्यक है। भागवत में 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, स्त्री संगी और भगवत संगी, ये 2 शब्द इस्तेमाल किया है। ये स्त्री संगी कौन है, अगर कोई पुरुष स्त्री के बारे में सोचकर मोहित होकर अपने आप कल्पना करते हुए हंस रहा हो कोई वो मूर्ख है, पागल बोलते हैं ना पागल वो स्त्रियों की बात होता है तो सुनने के पहले से वो हंसता है, ऐसे पागल हो जाता है वो, ऐसे पागल लोगों का संग नहीं करना चाहिए। स्त्री संग से भी वो बड़ा खतरनाक है वो, ऐसे बोला गया भागवत में, क्योंकि स्त्री को देखकर आप तुरंत माताजी करके बुलाओगे, लेकिन अगर कोई पुरुष स्त्री लंपट है वो आपस में दूसरे दूसरे पुरुषों से स्त्री के बारे में बोलता रहता है वो, और स्त्रियों के बारे में सोचकर पागल बनता है, उसके चेहरा देखकर आप पागल बनोगे। जैसे आजकल बाइक में कितने लड़का लड़की साथ में जाते हैं हंसते हुए, इस तरह का घटना ही अजामिल ने देखा था उस जमाने में। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस जमाने में एक आध बार कोई इस तरह का दृश्य देखता था कि स्त्री पुरुष हाथ में आलिंगन कर रहे हैं ऐसे कुछ, लेकिन कलयुग में कोने कोने में जिधर भी आंख डालो देखते हो सड़क में। इसलिए कलयुग को क्रैश कोर्स बोलते हैं, क्रैश कोर्स मालूम है आपको? क्रैश कोर्स का मतलब है आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, जो 2 साल में सिखाया जाता है आपको 3 महीने में सिखा देते हैं, लेकिन एक दिन आपको 15 घंटा जाना पड़ेगा ट्यूशन के लिए। इस तरह कलयुग जो है 100 साल के अंदर ही आपको जितना सत्ययुग में 1,00,000 साल जीकर उनको पास करना है टेस्ट, वो टेस्ट आपको कलयुग में 100 साल में ही पास कर दोगे आप। लेकिन टेस्ट बहुत इंटेंस रहेगा, बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इतना कलयुग के जमाने में गंदगी है, इसको भूलने के लिए हमें भगवत संघ की संगस्य। भगवत संघ की कौन है व्यक्ति, वो भगवान के बारे में सोच सोच कर उसका उन्माद बढ़ रहा है। जिस तरह स्त्री लंपट का स्त्री के बारे में बात सुनकर सोच सोच कर वो स्त्री लंपट का उन्माद बढ़ता है स्त्री के ऊपर, इस तरह भगवान के भक्तों को भगवान के ऊपर उन्माद बढ़ता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, एक दिन रात को सो रहे थे गंभीरा में, उनके बाहर कुंडी लगाया गया था, बाहर मतलब अंदर से बाहर नहीं आ सकते वो, और बाहर कौन सो रहे थे, रामानंद राय, शंकर पंडित, ये सब सो रहे थे। पता नहीं रातों रात महाप्रभु कमरे से बाहर गए, कैसे गए भगवान को ही पता, क्योंकि वो खुद ही भगवान है। दरबारा जे कुंडी लगाने के बाद भी वो बाहर आ पाए, और ये लोग देखे कि भगवान नहीं है अंदर, चैतन्य महाप्रभु नहीं है, तो हरिकेन एक लैंप लेकर बाहर ये लोग निकले, सब वैष्णव निकले ढूंढते हैं उनको, किधर गए किधर गए, तो सिमत द्वार के पास चैतन्य महाप्रभु नीचे गिर पड़े थे। तब वो लोगों ने देखा महाप्रभु उधर लेटे हैं, तो उनके चेहरे के ऊपर पानी फेंका और उनको उठाया, तो चैतन्य महाप्रभु जोर से रोने लगे। वो बोले कि आप लोगों ने मुझे किधर लाया है, मैं खड़ा था गोवर्धन के तट में, गोवर्धन के ऊपर मैंने देखा कृष्ण को, देखा मुरली बजा रहे थे कृष्ण, उनके निकट अनेक गाय बच रहे थे, और गोवर्धन के नीचे गोपियां फूल उखाड़ रही थी भगवान को माला बनाने के लिए, और मैं भी उनकी सेवा उनके साथ फूल निकाल रहा था, सेवा कर रहा था, और अचानक आप लोग आकर पानी फेंक कर मुझे जगा दिया, कृष्ण किधर है, वृंदावन किधर है, गाय किधर है, इस तरह वो रोने लगे। वो तो जब वो जोर से रोने लगे, सब भक्त भी साथ में रोने लगे वो, तो महाप्रभु जब हंसते थे भक्त सब हंसते थे, महाप्रभु जब रोते थे सब रोते थे। इस तरह महाप्रभु ने एक विरह भावना को प्रकट किया, उस विरह का लहर सब भक्तों के हृदय को स्पर्श करने लगा, उनके अंदर आंसू को पैदा किया, अश्रु को पैदा किया। तो इस तरह भगवत संगी जो प्रेमोन्माद में डूबे रहते हैं, उनके प्रभाव से हमारे चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। इसके एकदम विरुद्ध अगर हम लोग, जो लोग गंदे सहवास रखते हैं और गंदे संग करते हैं और गंदे चीजों के लिए पागल बनते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए परीक्षित बोल रहा है कि हे महात्मा पुरुष, आप तो राजा ऐसे पदवी धारण करने वाले, रोग नहीं तो स्त्री इत्यादि लोगों के निकट आप नहीं आते हो, लेकिन अभी आप खुद ही स्वाभाविक रूप से आप आए हो मेरे पास, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, ऐसे बोलता है। आप लोग जानते हो ना, चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए मना किया था प्रताप रुद्र से, क्योंकि वो ओरिसा का राजा था। अनेक भक्तों ने उनको बोला कि ये ओरिसा का राजा है लेकिन आपका भक्त भी है, लेकिन भगवान ने बोला देखो इसका एक उपाधि है राजा करके, तो ये पैसा और अनेक राजकार, राजनीति, कूटनीति इत्यादि के साथ संग करता है, मैं निकट नहीं आ सकता, ऐसे बोले महाप्रभु। इस तरह ये बोल रहा है कि मैं सारे दुनिया का राजा रहा हूं, लेकिन अभी मैं भगवान संबंधित विषयों को सुनना चाहता हूँ, आप अपने आप आए हो, ये मेरा ये ऐसे गृहस्थ के लिए, मेरे जिस गृहस्थ के लिए बड़ा सौभाग्य है, ऐसे बोलता है। 34 सान्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वैपुंसाम् विष्णुरिव सुरेतराः। जब विष्णु आते हैं असुर सब लोग भाग जाते हैं। जब आप ट्यूबलाइट लगाते हो अंधकार मिट जाता है। जब आप हरिनाम करते हो भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं उधर से। जैसे अमेरिका में इस्कान के भक्त लोग एक स्थान ढूंढ रहे थे, उधर एक बरी प्लेस करके स्थान मिला। बरी प्लेस का मतलब है श्मशान। भक्त लोग बोले कि प्रभुपाद जी ये श्मशान ही सबसे सस्ता है इधर, श्मशान का भूमि वो सस्ता है। तो प्रभुपाद ने बोला ले लो, लेकिन भक्त लोगों ने बोला कि लेकिन सब लोग बोलते हैं कि इधर भूत प्रेत पिशाच रहता है। प्रभुपाद बोले कि उधर एक मंदिर बांध दो और जोरदार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा हरे नाम लो सब भूत प्रेत पिशाच भाग जाएंगे सब। तो वो लोग ने किया कीर्तन किया, उसके बाद कोई भी भूत प्रेत के बारे में बात भी नहीं किया उधर। तो आप देखेंगे कि जिस तरह रोशनी आने से अंधकार मिट जाता है, विष्णु आने से असुर भाग जाते हैं, इस तरह हरिनाम लेने से भूत प्रेत पिशाच वो सब भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। उनको लगता है कोई चिमटी दे रहे हैं, कोई एक सुई लेकर हमको मार रहे हैं, ऐसा लगता है उनको, वो लोग डर जाएंगे भाग जाएंगे वो सब। इसी तरह संत महात्मा की संग करने से, उनकी उपस्थिति में, उनके मुखारविंदों से श्रवण करने से परीक्षित महाराज उनको बोल रहे हैं कि हमारे सब मल जो है चित्त में बैठा हो वो सब मिट जाता है। इस तरह उनकी गुणगान कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गटर में बहुत मच्छर आज आकर बैठते हैं, करेक्ट है? लेकिन सुबह सुबह एक आदमी पीछे एक टैंक लेकर ऐसे एक हैंडल जैसा होता है जैसे करता है, देखा ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो फिनाल है क्या, वो डेटॉल फिनाल ऐसा कुछ है, वो डालते ही सब मच्छर डर जाते हैं, भाग जाते हैं वो है? उसके बाद वो गटर में कुछ मच्छर आएंगे ही नहीं, कुछ पाउडर भी डालते हैं वो लोग नीचे, है ना। इसी तरह अगर कोई संत महात्माओं को संग करता है, हमारे अंदर जो अवगुण है काम क्रोध मदलोभ, वो सब मच्छर के बराबर हमको काट रहे हैं, वो सब भाग जाएंगे, ऐसे बता रहे हैं वो। तो इस तरह आगे 35 दो ही श्लोक है, इसको पूरा कर देता हूं। अब मैं भगवान प्रीत कृष्ण पांडुसुत प्रिय पैतृश्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात्त बांधवः। देखिए क्या बोल रहा है परीक्षित, मुझे मालूम है सुखदेव जी आप क्यों मेरे पास आए हो, मैं तो बहुत बड़ा अयोग्य हूँ, क्षत्र बांधव हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके आने का कारण क्या है, क्योंकि मेरे पूर्वज लोग जो थे, मेरे दादाजी लोग, जैसे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम इत्यादि, वो लोग कृष्ण के बहुत प्रेम के पात्र थे, वो भगवान कृष्ण के, क्योंकि वो लोगों के बारे में सोचकर आपने मुझे कृपा देने के लिए आप आए हो, ऐसे बोलता है। मेरा योग्यता नहीं है लेकिन मेरे पूर्वजों का योग्यता है, इसलिए आप आकर मुझे आपका संग दे रहे हो। जैसे हम भी कभी कभी देखते हैं कि कोई कांग्रेगेशन के माता पिता, वो हस्बैंड वाइफ, वो तीव्र भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, लेकिन हम उनके घर में जाते हैं, बेटा आता नहीं है कथा सुनने के लिए, वो वीडियो खेलता है अंदर। कभी माता पिता बोलते हैं, ए बेटा साधु महात्मा आए हैं, जाओ दंडवत करो, ऐसा आता है, कदम तुरंत अंदर चला जाता है, वापस जाकर खेलता है। ठीक है बेटा अभी कथा कर रहे हैं महात्मा जी, थोड़ा आकर बैठो, थोड़ा सुनो। ठीक है, उधर आकर पीछे बैठता है और देखता कोई नहीं देख रहे हैं, बैठे बैठे खेलता है, ऐसे होता है। फिर भी साधु लोग उनके ऊपर भी प्रेम दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि वो भक्त का बेटा है ना, वो दिखाएं। इस तरह वही बोल रहे हैं, मेरा योग्यता नहीं है, मैं तो अयोग्य हूं, लेकिन पांडवों के ऊपर प्रेम है सुखदेव जी का, इसलिए मेरे ऊपर भी प्रेम दिखा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। अन्यता ते व्यक्तगतेर दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसः। अनुवाद पढ़िए।
अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरना शत्रु को दृष्टिगोचर नहीं होते।
इस तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको एक आदर्श परंपरा के प्रतिनिधि मिल गए आपको, तो आप बड़े भाग्यशाली हो, जरूर आप भगवत धाम लौट पाओगे। और प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में भगवान बैठे हैं, वो आपको बता देंगे कि कौन डोंगीबाजी कर रहा है, कौन असली गुरु है। अगर हम उनको प्रार्थना करेंगे तो हर एक व्यक्ति को एक आदर्श परंपरा में आने वाले गुरु को प्राप्त होना चाहिए, उससे उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसमें। हाँ, अभी 37 से लेकर आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से वो प्रश्नोत्तर करना चालू करता है, अतः प्रचाम संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु, क्योंकि ये 27वां श्लोक से लेकर ये अगले अध्याय से जुड़ा है दूसरे स्कंद में। हम प्रवचन को हम इधर ही विराम देंगे और आगे का सब्जेक्ट हम अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का बहुत मुख्य विषय यह था कि हम जब हम भगवत ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना चाहते हैं हमें नम्र बनना पड़ेगा, अपने आप को अपने आप में त्रुटियों को देखना पड़ेगा हमको, तो एक बात है। दूसरी बात है हम साधु महात्माओं को जितना हम आदर देते हैं सम्मान देते हैं उनकी महानता जानते हैं, उनकी असली महानता है कि वो परंपरागत दिव्य ज्ञान को प्रदान करने वाले पोस्टमैन जैसा है वो, इसलिए हम उनको लाभ लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि भगवत संगी वो व्यक्ति है जो भगवान के लिए उनके अंदर उन्माद है, भगवत कार्यक्रम में लगता है 24 घंटा, उसका दूसरा कुछ कार्य नहीं है उसका। इस तरह से संगी संगी नहीं तो स्त्री संगी वो व्यक्ति है जो स्त्री लंपट है, ऐसे कुछ संग से हमें बचना चाहिए। और इसके भी पहले मैंने एक पॉइंट बोला कि सुखदेव गोस्वामी के संबंध में मैंने बहुत गहराई से आपको वर्णन किया, ताकि आप लोग ये बात हमें समझ में आएगा कि सुखदेव गोस्वामी को इतना आदर क्यों दिया गया, क्यों नारद जी और वशिष्ठ वेद व्यास जी परशुराम जी इत्यादि बैठ कर सुने, क्योंकि वो ऐसे रस का आध्यात्मिक दुनिया का रस का अनुभव कर रहे हैं सुखदेव जी। इसलिए आप देखेंगे आगे भी जब सत्र को बढ़ाएंगे सुखदेव जी दशम स्कंद में 5 रसों का वर्णन जो करते हैं वो करने के लिए सब वक्ता लोग नहीं कर पाएंगे, वो सुखदेव जी का व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए बोलते हैं यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमो अंधम संसारिणाम करुणयाग पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुपयामि गुरु मुनीनाम। ये व्यास पुत्र सुखदेव यस्व अनुभव बोलते हैं, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारम, अपने अनुभव से सिखा रहे हैं भागवत, क्योंकि उनका अनुभव राधा कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा में है, इसलिए उनको इतना आदर दिया गया। वो बताने के लिए हमने थोड़ा कथा को लंबा बताया। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।